ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा पर केंद्रित नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के शीर्ष नेताओं के बीच हुई विचार विमर्श। सभी पक्षों की सहमति से बीआरआई किया जाएगा लागू, आरजू राणा देउबा का कथन। स्थानीय स्तर पर 41 रिक्त पदों के लिए मतदान होगा कल। चुनाव की सभी तैयारियां हो चुकी है पूरी, आत्मविश्वास के साथ मतदान करने के लिए आयोग ने सभी से किया आग्रह। और सीरिया के अलेप्पो शहर का अधिकतर हिस्सा विद्रोहियों के है नियंत्रण में। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आसन्न चीन भ्रमण के बारे में जानकारी कराया। राष्ट्रपति के कार्यालय शीतल निवास पहुंचकर प्रधानमंत्री ओली ने सोमवार से शुरू होने वाले अपने चीन भ्रमण के बारे में राष्ट्रपति पौड़ेल को जानकारी कराया। भेंट में प्रधानमंत्री ओली के चीन भ्रमण के अतिरिक्त विविध विषयों में विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी प्रधानमंत्री के सचिवालय ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के औपचारिक भ्रमण के पूर्व संध्या में सत्ता साझेदार नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस के शीर्ष दल और संयंत्र स्तर पर बीआरआई लगायत दो देशों के सहयोग और सहकार्य के संभावित विषयों पर विचार विमर्श हुआ। चीन भ्रमण पर केंद्रित होकर हुए विचार विमर्श में प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली और कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा सहित सभी दलों के अन्य नेताओं का सहभागिता था। आज ही प्रधानमंत्री ओली के उपस्थिति में प्रधानमंत्री नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ हुए विचार विमर्श में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि दो देशों के बीच के संबंध को और सुमधुर बनाने का भ्रमण का मूल उद्देश्य है, इसलिए उसको पूरा करने के लिए सभी को अपने स्थान से सक्रिय भूमिका निर्वाह करने का निर्देश दिया। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने चीनिया परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई संबंध सभी पक्षों के सहमति के कार्यान्वयन किया जाएगा। आज चीनिया विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर चीन के औपचारिक भ्रमण संपन्न करके स्वदेश वापस आने के बाद तिरुवनंतराष्ट्रीय विमान स्थल पर संचार कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरआई परियोजना नेपाल और चीन बीच के सहमति और समझदारी के साथ ही नेपाल के भी साझा सहमति के आधार पर होगी। मंत्री डॉ राणा ने कहा कि अनुदान पर ही बीआरआई परियोजना को आगे बढ़ाने के विषय पर विचार विमर्श हो रही है। स्थानीय तह के रिक्त विभिन्न 41 पदों के लिए कल रविवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने उपनिर्वाचन के संपूर्ण तैयारी पूरा होने की जानकारी दी है। निर्वाचन होने वाले संबंधित स्थानीय तहों में स्थापना किए गए मतदान केंद्रों पर कल सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होगी। बता दें कि नगरपालिका प्रमुख 1, उपप्रमुख 1, गांवपालिका अध्यक्ष 2, उपाध्यक्ष 4 और वार्ड अध्यक्ष 33 करके 41 पदों के लिए उपनिर्वाचन होने जा रही है। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने कहा कि नेपाल के राष्ट्रीय हित को उच्च प्राथमिकता में रखकर वर्तमान सरकार आगे बढ़ रही है। आज नेपाल चीन हिमालयन मैत्री समाज और ट्रांस हिमालयन अनुसंधान तथा अध्ययन प्रतिष्ठान द्वारा काठमांडू में आयोजित नेपाल चीन संबंधी बीआरआई कार्यान्वयन विषयक अंतर्क्रिया में मंत्री अधिकारी ने कहा कि राष्ट्र और जनता के हित विपरीत कोई भी समझौता नहीं होगा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल ने कहा कि नेपाल को आवश्यकता और हित को देखकर बीआरआई स्वीकार करना चाहिए। चीन के ग्वांजाओ में आयोजना होने जा रहे विश्व सम्मेलन में सहभागी होने के लिए आज वहां के लिए प्रस्थान करने से पहले तिरुवनंतराष्ट्रीय विमान स्थल पर संचार कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री खनाल ने कहा कि चीन सरकार द्वारा आगे किए गए बेल्ट रोड इनिशिएटिव बीआरआई परियोजना स्वीकार करना चाहिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई अंतर्गत अनुदान ही उपयुक्त रहेगी। आज नेपाल प्रेस यूनियन कास्की द्वारा पोखरा में आयोजित पत्रकार भेंटघाट में उप प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि बीआरआई परियोजना अंतर्गत सड़क सुरंग लगायत भौतिक पूर्वाधार के क्षेत्र का चयन होना चाहिए। काठमांडू की तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 लामबगर स्थित शांति टोल गेट के नजदीक बस के गेट से गिरकर दो लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मरने वालों में नुआकोट ककनी गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के 50 वर्षीय संच बहादुर लामा और तादी गांवपालिका वार्ड नंबर 1 के काठमांडू तारकेश्वर वार्ड नंबर 8 लामबगर में रहने वाले 58 वर्षीय सुंतली ओझा की मौत हो गई। ये जानकारी नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ने दी। पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि नेपाल सरकार हरेक डोल्पावासी नागरिकों का आधारभूत आवश्यकता पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। डोल्पा की ठूली भेरी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 दुर्गांव के एक खोली में निर्माण किए गए पेयजल तथा सरसफाई आयोजन के आज उद्घाटन करते हुए मंत्री यादव ने कहा कि पेयजल के इस तरह के परियोजनाओं से डोल्पा सहित नेपाल के अन्य दुर्गम क्षेत्रों के जनता की जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया के विद्रोही गुट ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो के कई इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यूनाइटेड किंगडम यूके स्थित संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने यह दावा किया है। एसओएचआर ने शुक्रवार शाम को कहा कि विद्रोहियों ने शहर के आधे से ज्यादा इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बीते सालों में विद्रोहियों ने सीरियाई सरकार पर यह सबसे बड़ा हमला किया है। साल 2016 में सेना से बाहर निकाले जाने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद के सेना से पहली बार लड़ने वाले विद्रोही अलेप्पो तक पहुंचे हैं। इस्लामिक स्टेट मिलिटेड समूह हयात तहरीर अल शाम एचटीएस से जुड़े एक चैनल ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें शहर के अंदर वाहनों में विद्रोह लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा पर केंद्रित नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के शीर्ष नेताओं के बीच हुई विचार विमर्श। सभी पक्षों की सहमति से बीआरआई किया जाएगा लागू, आरजू राणा देउबा का कथन। स्थानीय स्तर पर 41 रिक्त पदों के लिए मतदान होगा कल। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आत्मविश्वास के साथ मतदान करने के लिए आयोग ने सभी से किया आग्रह। और सीरिया के अलेप्पो शहर का अधिकतर हिस्सा विद्रोहियों के है नियंत्रण में। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।